रात्रि क्लास चल रहा था 18/1/66 और इसी तारीख को रिवाइज हुई 1967 में। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी वो दुनिया वाले फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिज्म, ये अक्षर दो हैं। वो स्पिरिचुअल भी इसको कहते हैं और इसको फिलॉसफी भी कहा जाता है। उन्हों को ये मालूम नहीं है कि स्पिरिचुअल नॉलेज ज्ञान का सागर है। वो जो रूहानी नॉलेज देते हैं, तो रूहानी नॉलेज का अर्थ ही माना रूह, रूह की नॉलेज दें। क्योंकि जिस्म की नॉलेज एक जन्म से कनेक्टेड है, और जिस्म पांच तत्वों का पुतला है, पांच तत्वों को पंचभूत कहा जाता है। पंचभूतों की नॉलेज भौतिक नॉलेज है, और ये है रूहानी नॉलेज। जिसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, वो लोग इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कह देते हैं। जबकि आध्यात्मिक अर्थ है अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर, अर्थात आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है उसके अंदर 84 के चक्र का ज्ञान भरा हुआ है। अनेक जन्मों का ज्ञान है। आत्मा के अंदर का ज्ञान परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया भी फिलॉसफर्स होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो इस बात को नहीं जानते। वो कह देते हैं फिलॉसफी है, उसमें तो ऐसा कभी कोई कहते ही नहीं है कि सुप्रीम रूह या कोई महात्मा बैठ करके कोई रूहों को समझाते हैं। वो बात तो है ही नहीं। तो उसको रूहानी नॉलेज नहीं कहा जाए। वो उनकी तो जिस्मानी नॉलेज है, भौतिकवादी ना लीजे, मनुष्यों ने बैठ करके बनाई है ये सारी फिलॉसफी की किताबें, मनुष्यों ने बैठ बनाई है। और ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल गॉड फादर बैठ करके अपने चिल्ड्रन को समझाते हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं है। जब तक कोई यहाँ से जाकर के उनको समझावे कि बरोबर स्पिरिचुअल नॉलेज गीता की नॉलेज है और ये गीता का ज्ञान कोई फिलॉसफी नहीं है, यहाँ तो भगवान ने बैठ करके रूहों को समझाया है। और उस गीता में लिखा है अर्जुन को बैठ करके कृष्ण ने समझाया, अब ये दोनों नाम देखो वो आता है और हम कहते हैं नहीं, हमारा सुप्रीम रू है, सो हम आत्माओं को बैठ करके पढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, मना रूहानी नॉलेज है जो रूहों के प्रति है, क्योंकि रूह ही पतित बनती है। अभी ये बात तो कोई बेचारा समझते ही नहीं है, जब तक कि यहाँ वाला कोई उनको जाकर न समझावे और किसको अच्छे से पकड़े। ये संसार असुल विलायत में थी, अभी फिर कोई महर्षि है कि क्या है, किसमें है, ऋषिकेश में तो धारणा है ना इन सभी सन्यासियों और भक्तों को और महात्माओं को फलानों को। ये समझते हैं कि हरिद्वार कोई बड़ा तीर्थ है, बाकी वास्तव में तो हरिद्वार है ही नहीं। ये हरिद्वार तो गांव का नाम है, तो वहां उस गांव को शेप दे दिया है। ऐसा शेप दे दिया है कि यहाँ कोई जाते हैं स्वर्ग आश्रम जाते हैं, फिर वहां लक्ष्मण झूला दिखाते हैं, फलन। परंतु है तो कुछ भी नहीं, बैठ करके नाम रखे हैं ऋषिकेश, कहते हैं यहाँ ऋषि लोग रहते थे, बाकी हैं तो सभी तीर्थों में टुबके मारने वाले, डुबक मारते हैं ना, अंदर जाकर के सिर्फ निकाल आते हैं। बाहर निकाल लेते हैं, ये भी टुब्बी मार करके फिर से निकाल देते। आधार है 66 की वाणी का। रात्रि क्लास चौथा पेज। अब ये तो ज्ञान की बात हुई। ज्ञान जल में डुबकी मारना, आगे भक्ति मार्ग में तो सब स्नान करने जाती थी, गंगा स्नान में जाते थे, टुब्बक मारते थे, और ये काम जन जन्मांतर किया होगा। अभी तो इसकी नॉलेज को फिलॉसफी कोई है ही नहीं, फिर कोई लिखा पढ़ी करे, अपने पास अच्छा जो सेंसिबल सर्विस में हो, ऐसे तो कुछ कोई ने चिट्ठियां भी लिखी हैं कि किसको चिट्ठी लिखी थी। अरे मुट्ठी, वो इनको दिखलाया नहीं, दिखलावे तो सुनावे। चिट्ठी लिखा है राधा कृष्ण को, और पता नहीं दूसरा किसको, किसके ऊपर लिखा था, देखें तो सही। अगर यहाँ से दिल्ली वालों को लिखेंगे ना, तो कहाँ तक होगी। ये बिजनेस जब तलक बंद हो तब तलक ये भी होगी। तो कल उनको चिट्ठी लिख देते हैं कि वहाँ चिट्ठी देवे, वहाँ के जो बड़े हैं महर्षि हैं या उनके भी जो बड़े हैं, विलायत से भी बहुत आए हुए हैं, तो कापी निकाल करके वो जो भी हैं, इनमें कुछ नाम है अच्छे अच्छे, या तो लिफाफे के ऊपर नाम डालकर वहां भी लिख करके किसको दे सकते हैं, बहुत हैं, कुछ तो नाम है, तो उनको ये समझाए देवे कि फिलॉसफी अलग चीज है और ये स्पिरिचुअल नॉलेज अलग चीज है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल फादर देते हैं, अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस को देते हैं, यानी सुप्रीम रूह देते हैं, रूह को बैठ करके समझाते हैं। उसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। वो रूहानी नॉलेज वो तो बैठ करके समझाते हैं और अपना परिचय देते हैं, और षष्ठी का चक्कर कैसे फिरता है वो भी बताते हैं। वो आते ही तब है जबकि ये दुनिया जो पतित है, उनको पावन करने के लिए आना है, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए। विनाश होगा, पीछे नई दुनिया की पालना होगी। तो ये पूरा जैसे अपना है, और जिसके लिए हम फैक्शन फैगर्स भेज देते हैं हिल स्टेशन, इनसे समझ लो कि हमको पढ़ाने वाला सुप्रीम रूह है जो सभी का बाप है और जो नॉलेजफुल है। वो नॉलेजफुल बाप हमको पढ़ाए रहे, उस नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। मनुष्यों की ये शास्त्रों की नॉलेज को कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कहा जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल तो आत्मा को कहा जाता है। और उनका वास्तव में असल स्वधर्म ही है शांत। शांति धाम वहां के रहने वाले हैं। तो उन विचारों को कोई को तो ना लीजिए जाए। यहां से बहुत बच्चे गए तो हैं, परंतु उनकी बुद्धि में तो आवे, चलो आवे ना आवे उनको ही जा करके समझा दें। तो बाबा इशारा इसमें भी बता देते हैं और कल वहां लिख भी देंगे और अखबार का भी लिख देंगे कि उन लोगों को चिट्ठी लिखो अच्छी तरह से, फट से लिखो तुरंत दान महापुण्य, वही टाइप कराया छपाया, इंटर फॉर्म्स तो रहता ही है ना, न भी निकल लिखाया तो ये त्रिमूर्ति लगाए। इस त्रिमूर्ति में शिव तो ऊपर लगाया जाता है। बोलो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है और ये गॉडफादर शिव है। जो गॉडफादर है शिव हमको नॉलेज देते हैं। वो शिव रूह है, उनकी रूह का नाम है शिव, और वो रूहों को ही नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज है ये रूह है इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है। हम सुन रहे हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे देते हैं और खुद देखो देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मैं ही इनको नॉलेज देता हूं। गीता में ही लिखा हुआ है श्री भगवान वाच, और कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ हो। भगवान वाच माने स्पिरिचुअल गॉड फादर हो वाच, क्योंकि इनकॉर्पोरियल को ही भगवान कहा जाता है। कॉर्पोरियल मनुष्य होता है, तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य वास्तव में तो मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु ब्रह्मा का नाम है। अव्वल नंबर ब्रह्मा मनन चिंतन मंथन करने वाला ब्रह्मा, जिनकी औलाद मानसिक कही जाती है। शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा के चार मानस पुत्र हुए, हर चीज की शुरुआत पहले सूक्ष्म से होती है, बाद में स्थूल चीज तैयार होती है। इनकॉर्पोरियल गॉडफादर निराकार है ना, उनका कोई आकार नहीं है, साकार की तो बात ही नहीं। हाँ, साकार के बगैर ज्ञान कैसे सुनावेंगे? तो साकार में प्रवेश करते हैं। जिस साकार में प्रवेश करते हैं उसको मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन वाले को मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन न करे तो नॉलेज धारण नहीं कर सकता, और भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार? वो तो अजन्म है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए तीनों काल का ज्ञाता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का खूट ज्ञान भंडार भरा हुआ है। जो कभी खूटता ही नहीं, मनुष्य की नॉलेज को अखूट ज्ञान का भंडार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र हैं और ये जो भी मनुष्य लोक है, इसमें जो भी प्राणी मात्र हैं, वो सब साकारी हैं। गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, भगवान तो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु नहीं है, इसलिए उसे सोच विचार करने की, मनन चिंतन मंथन करने की कोई दरकार नहीं। मनुष्य को मनन चिंतन मंथन करना होता है, तो भगवान तो निसंकल्प है, उसे कोई संकल्प विकल्प करने की दरकार नहीं। इस हिसाब से मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को मन होता है, भगवान तो अमन है। और सदा मन चैन में रहने वाला है। पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, पतित माहौल में आता है, फिर भी यह मन चैन में रहता है। उसको मन का प्रयोग करने की दरकार ही नहीं। जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी आत्मा मन का प्रयोग करती है, मनन चिंतन मंथन करती है। तो जो मनन चिंतन मंथन करता है, सोच विचार करता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? परंतु भगवान कहते हैं कि मैं जब इस दुनिया में आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ, अर्थात जैसे मैं निसंकल्प हूँ, मुझे कोई भी संकल्प विकल्प कराने की करने की दरकार नहीं, ऐसे तुमको भी नंबरवार बनाता हूँ। और तुम बच्चों में जो नंबरवार एकाग्र बुद्धि बनते हैं, उनमें अब्बल नंबर भी कोई होता है, जिसे मुसलमान लोग अल्लाह अब्बल दीन कहते हैं। अब्बल नंबर, दोएम नंबर, ये नंबर दुनिया वालों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। मैं कोई गिनती में नहीं आता हूँ, जो गिनती में आए सो चक्कर में आए। मैं तो एक ही तुरिया हूँ, मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मनुष्य आत्माओं की आपस में तुलना की जा सकती है। ये अब्बल नंबर एक्टर है, ये दोयम नंबर एक्टर है, ये सर्वसाधारण है। मैं तो इस प्रकार की गिनती में नहीं आता। परंतु जो अव्वल नंबर है वो बाप का बड़ा बच्चा है, आत्माओं के बीच, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच बड़ा भाई। और वो बड़ा भाई राजयोग की प्रैक्टिस के आधार पर बनता है। जिस राजयोग में राज भरा हुआ है, क्या राग भरा हुआ है, राज है जो गीता में प्रसिद्ध है, राग गुह्यम गुह्य से गुह्य राग समझाता हूँ। ऐसा गुह्य ज्ञान और कोई भी मानवीय शास्त्र में नहीं है। ये एक ही भगवान वाच है, गीता शास्त्र। जिसे स्पिरिचुअल गॉडफादर वो वाच करते हैं, वाच कैसे करते हैं? उनको तो अपना शरीर ही नहीं, तो बताते हैं कि मैं जिस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से आता हूँ, उसके द्वारा वाच करता हूँ। क्या वाच करता हूँ? गीता ज्ञान वाच करता हूँ, कि गीता ज्ञान अमृत देता हूँ। कैसे अमर बनते हो? नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, देवता बने। देवताएं अमर होते हैं ना? तो उनको अमर बनाने वाला अमरनाथ ही होगा ना? अमरनाथ जिसे कहा जाता है, न मरने की बात है। शरीर मरता है या आत्मा मरती है? तो जिसको शरीर है लेकिन शरीर होते हुए भी मरता नहीं है। जैसे आत्मा अमर है, वो शरीरधारी भी अमर है। जिस शरीरधारी में सुप्रीम सोल आता है, संग के रंग से आप समान बनाते हैं, निराकार बनाता है, निराकारी स्टेज धारण करने वाला बनाता है। परंतु सदाशिव बनाता है क्या? भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सदाशिव बनाता है? नहीं, जिस युग में आता है उस पुरुषोत्तम संगम युग में सदा सर्वदा के लिए कल्याणकारी है। बाकी तो है मनुष्य आत्मा, मनुष्य आत्माएं सभी सामाजिक प्राणी है, समाज के प्रभाव में रहने वाली है।
और पुरुषोत्तम संगम युग है ही तब तक के लिए,
जब तक पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम और फिर कहा जाता है परम पुरुष, पुरु माने शरीर रूपी पुरी और शय माना शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में सर्वोत्तम तरीके से रहने वाला और सदा सर्वदा अकाल रहने वाला, चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसे भी व्यक्तियों के बीच में रहना पड़े, सदा मन चैन में रहने वाला, और सदा का तो अर्थ ही होता है तीनों कालों से, वर्तमान भी है भविष्य भी है और भूतकाल भी। तो देखो मैं सिर्फ कौन से युग में आता हूँ, संगम में आता हूँ, बाकी चार युगों में तो नहीं आता। जिस संगम में आता हूँ उसमें भी बुद्ध योग से ऊंची स्टेज में रहता हूँ, यह बुद्धि नीचे आती है, है ऊंची स्टेज में रहता। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ और गुह्य राज बताता हूँ, समझाता हूँ, वो गुह्य राज को समझने वाला बुद्धियोग से सदैव एकाग्र रहता है क्या? पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? है कराने वाला है, बात किसकी हो रही है? शंकर की बात हो रही है ना, शंकर पुरुषार्थ करने वाला है या कराने वाला है? पुरुषार्थ करने वाला है। जब तक मैं उसमें प्रवेश करता हूँ अखूट ज्ञान का भंडार देता हूँ, तब तक पुरुषार्थी है, संपन्न नहीं कहा जाएगा। इसलिए यादगार जो मंदिर बने हुए हैं, शिवालय, उन सभी मंदिरों में, पुराने पुराने मंदिरों में खास जाकर देखो,
बीच में शिवलिंग और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। उन देवताओं की मूर्तियों के बीच शंकर की मूर्ति रखी जाती है, जिसे महादेव कहा जाता है। भगवान तो नहीं कहा जाता। देव में और भगवान में अंतर है या नहीं है? है, है? तो जब तक पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ करने वाला है, तो भगवान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सदाकाल की एकाग्रता हासिल नहीं की है। जब सदाकाल की एकाग्रता हासिल कर ले, खास इस संगम युग में जिसे कहते हैं निरंतर याद, तब कहेंगे निसंकल्प स्टेज। कोई संकल्प नहीं, सौ % एकाग्र। मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं। मना त्रिकालदर्शी स्टेज हुई तो मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं। याद का भी पुरुषार्थ है ना। सदैव याद स्वरूप, ऐसी याद स्वरूप कि जो देखे इन स्थूल आंखों से भी और जो सुने इन स्थूल कानों से भी, उसके ये अनुभव होने लगे कि साकार सो निराकार मेरा बाप आ गया, आत्मा का बाप आ गया या साकार मनुष्यों का बाप आ गया है? साकार मनुष्यों का बाप तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव ही प्रस्तुत रहता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है और बीज का कभी नाश नहीं होता है। जड़ें सड़ जाती है, तना सड़ जाता है, टहनियां सड़ जाती है, फल फूल सड़ जाते हैं, परंतु बीज का कभी नाश नहीं होता। तो मनुष्य आत्माओं के बीच में वो मनुष्य आत्माओं का पिता मनन चिंतन मंथन करने वालों का बाप
इस सृष्टि पर सदैव हाजिर रहता है। वो न रहे तो नई सृष्टि भी नहीं बन सकती। सृष्टि में जड़ और जंगम दो प्रकार के पदार्थ, जड़ पांच तत्वों को कहा जाता है, चैतन्य आत्माओं को कहा जाता है, नई सृष्टि बनेगी तो जो जड़त्व मय पदार्थ है वो पहले संपन्न होगा, बाद में आत्मा प्रवेश करेगी। जैसे माता के गर्भ में माता कहो धरणी कहो पांच तत्वों का पुतला पहले आता है या आत्मा पहले आती है? पांच तत्वों का पुतला पहले आता है। किस आधार पर आता है? कोई पांच तत्वों का पिंड माता के गर्भ में अंधा तैयार होता है, कोई लूला तैयार होता है, कोई लंगड़ा तैयार होता है, कोई नाटा, कोई काला, कोई गोरा, ये शरीर किस आधार पर बनता है? कोई तो आधार होता है या नहीं होता है? है? हाँ, जिस आत्मा को उस निर्जीव पिंड में प्रवेश करना है उस आत्मा के वाइब्रेशन के आधार पर वो पिंड तैयार होता है और वो वाइब्रेशन उसके पूर्व जन्म के संस्कार से जुड़े हुए होते हैं। अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं, परंतु सृष्टि के आदिकाल में नई सृष्टि तैयार होनी है तो सतो प्रधान सृष्टि होगी या राजसी तामसी होगी? सतो प्रधान सृष्टि में सभी मनुष्य आत्माओं के जो शरीर तैयार होने हैं पहले पहले जन्म में, वो शरीर उनके कर्मों के आधार पर तैयार होते हैं और वो कर्म संगम युग में बनते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में जबकि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो पुरुष कही जाती हैं,
शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली वो सभी आत्माएं इसी संगम युग में आत्माओं के बाप का ज्ञान लेकर तैयार होती है। और उस ज्ञान का महामंत्र क्या है जो गीता में भी विख्यात है, है? मन मना भव, मेरे मन में समझ। मेरे मन में समा जाने वाली बात कौन सी आत्मा कहेगी? जो आत्माओं का बाप रूहानी बाप कहा जाता है, स्पिरिचुअल गॉडफादर कहा जाता है, वो कहेगी या स्पिरिचुअल गॉडफादर? जिस तन का आधार लेता है वो तनधारी आत्मा कहेगी, द्वारा कहेगी, सुप्रीम सोल की आत्मा कहेगी, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। या मनुष्य आत्मा कहेगी? मनुष्य आत्मा भी तब कहेगी जब आत्माओं के बाप समान निराकारी स्टेज धारण कर ले। निरंतर याद की स्टेज, याद में कोई भी अंतर न पड़ने पावे। कौन सी याद है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा किसे कहा जाता है? तो जिसका शरीर है, शरीरधारी आत्मा, वो स्वयं कहेगी या कहती है मेरे मन में समा जा? तो उसका मन कौन है? मन कहो, दिल कहो, लगते जिगर कहो, कौन है? हा? कोई भी बाप का दिल बाप का जो बड़ा बच्चा होता है वही बाप का लगते जिगर होता है। जिस बड़े बच्चे को दुनिया की हिस्ट्री देखी जाए तो बड़े बच्चे को ही बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी सौंप देता है। यही कारण है कि परिवार में बड़ा भाई बाप समान माना जाता है। बाप समान है, बाप तो नहीं है, है? बाप है या बाप समान है? बाप समान है। कोई भी नहीं मानेगा कि मेरा बाप है, है? परिवार में कोई ऐसा मानेगा कि बड़ा भाई मेरा बाप है, है? नहीं मानेगा। इसलिए मुसलमानों में भी कहा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, नूर माने रोशनी, जो खुदा की ज्ञान की रोशनी है, वही ज्ञान की रोशनी आदम में आ जाती है। संपन्न पुरुषार्थी बनने पर और वो ज्ञान की रोशनी तीनों काल की ज्ञान की रोशनी होती है या लिमिटेड होती है? तीनों काल की ज्ञान की रोशनी। तो सदाशिव कहें है, तो बड़े भाई को सदाशिव कहें है, कहें या नहीं कहें है? संगम युग है, 5000 वर्ष के ड्रामा का शूटिंग पीरियड, रिहर्सल पीरियड, रिकॉर्डिंग पीरियड, जैसी रिकॉर्डिंग होगी, रिहर्सल होगी, जैसी शूटिंग होगी, वैसा ही उस ड्रामा में पार्ट चलेगा या आगे पीछे हो जाएगा? तो संगम युग के लिए कहेंगे कि संगम युग में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, वो संगम युग में प्रैक्टिकल में सदाशिव का पार्ट बजाता है। शिव माने कल्याणकारी। संपन्न होने पर सदाशिव है या पहले से ही सदाशिव है? है, संपन्न होने पर सदाशिव है। तो अंतर हुआ या नहीं हुआ सुप्रीम सोल शिव में और शिव बाप के बड़े बच्चे में है? क्या अंतर हुआ? है कोई अंतर नहीं? पुरुषार्थी जीवन में अंतर था या नहीं था? पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद कोई अंतर नहीं? तो इससे साबित हुआ कि जो भी आत्माएं हैं जन्म-मरण के चक्र में आने वाली, शरीर धारण करने वाली, गर्भ से जन्म लेने वाली, वो सभी आत्माएं क्षर हैं, क्षरित होने वाली हैं, पतित होने वाली हैं। सभी आत्माओं की शक्ति क्षीण होती जाती है। इस सृष्टि के चक्र में आने से लेकिन जो आत्माओं का बाप है उसकी शक्ति कभी भी क्षरित नहीं होती, क्षीण नहीं होती। उस शक्ति को मेंटेन करने के लिए उस सुप्रीम सोल को कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है। बाकी जो भी क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, देह के बंधन में आने वाली आत्माएं हैं, उन सभी को कुछ न कुछ कमोबेश अपनी आत्मा की शक्ति मेंटेन करने के लिए एक का संग का रंग लेना पड़ता है। संग का रंग साकार में लगता है या निराकार में लगता है? अगर साकार से ही संग का रंग लगता है तो सुप्रीम सोल बाप उसका जो बड़ा बच्चा जिस मुकर्रर रथधारी में शिव प्रवेश करता है उसको किसके संग का रंग लगता है? अगर यही नियम है कि संग के रंग से ऊंचे उठते हैं और संग के रंग से नीचे गिरते हैं, संग तारे कुसंग बोरे, तो सुप्रीम सोल बाप का जो बड़ा बच्चा है आत्माओं के बीच सदा काल की आत्मिक स्टेज को धारण करने का पुरुषार्थी सदा काल के लिए संपन्न पुरुषार्थी बने। तो जो संपन्न पुरुषार्थ है और वो संपन्न पुरुषार्थी किसका संग का रंग लेता है, है? सुप्रीम सोल की याद का संग का रंग लेता है तो दूसरी आत्माएं क्यों नहीं ले सकती, है? ज्ञान लेके रह सकती। अखूट ज्ञान का भंडार तो सुप्रीम सोल बाप बड़े बच्चे को देता है, या औरों को भी देता है? बड़े बच्चे को देता है। जो बड़ा बच्चा है वो निराकारी ज्ञान का भंडारी है, जो बोला भी है, शिव बाप ने बार बार बोला है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ परंतु मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो, नंबर बार। तो त्रिकालदर्शी में और मास्टर त्रिकालदर्शी में क्या अंतर है? हाँ जी, मास्टरी हासिल है। मास्टरी हासिल है यानी ट्रेंड है, किस बात में ट्रेंड है, है? कि जब से ज्ञान मिलता है तब से ही उस आत्मा का ये फाउंडेशन पक्का रहता है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मुझे आत्मा का ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है, किसका है? है शिव बाप का है। जैसे कोई परिवार में परिवार का बाप होता है तो उस बाप को परिवार के भांतियों के बीच में कौन सा भांति विशेष होता है जो बाप को अपना पूरा तन अर्पण करता है? माँ होती, जिस माँ के ऊपर बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी विशेष शक्तियां हैं, वो वो सब अर्पण करता है। किसको? माँ को। एड़ी चोटी की पावर लगाकर माँ को अर्पण करता है। लौकिक दुनिया में जो लौकिक बाप होता है वो माता के प्रति अपने जीवन का सारा सत्व अर्पण करता है। सत्व माने सार। कोई भी पुरुष के पास क्या सार होता है? है सर्वोपरि शक्ति क्या होती है अंदर? अरे नहीं पता है, काम बेकार नहीं, वो तो बेकार हो गया। बे माने विपरीत, कार माने कार्य। जिसे कहते हैं प्योरिटी की पावर, शुक्राणु, वीर ये कहा जाता है। वो हर पुरुष के पास ऐसी शक्ति जमा होती है जिसे वो स्वयं धारण नहीं कर सकता जीवन में। सारा जीवन कोई भी पुरुष धारण नहीं कर सकता। और धारण कराने के लिए उसे धरने की आवश्यकता पड़ती है। जिन्हें कन्या माता रूपी धरणी कहा जाता है। कोई धरणी अच्छी होती है, कोई धरणी कलर आती होती। अच्छी पैदाइश नहीं कर पाती। कहते भी हैं घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरणी अगर अच्छी नहीं है तो घर नरक बन जाता है। अच्छी का मतलब है अब भी बेचारी। सती साध्वी सत्य को धारण करने वाली, जिसे भारत में सती कहा जाता है, जिस सती की शक्ति भारतीय शास्त्रों में दिखाई गई है, कि वृंदा सती के पास ऐसी शक्ति की शक्ति थी कि जिस शक्ति का आधार लेकर वृंदा का पति जालंधर राक्षस भगवान के ऊपर भी विजयी होता रहा। जो भगवान शंकर कहा जाता है उसका पूरा परिवार भी उसको हरा नहीं सका। कौन सी शक्ति थी जालंधर के पास? वो सत्य की शक्ति थी। जिस सत्य रूपी शुक्राणु को सती साध्वी धरणी ने अपने जीवन में धारण कर रखा था, जो ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन बनाती है, उस वाइब्रेशन के अंदर उस प्यार में पलने वाला जालंधर भगवान के ऊपर भी विजयी बनता रहा। और जब वृंदा का सत्य डिग गया, कारण या कारण, तो जालंधर मारा गया। यही बात है ये जो वसुधैव कुटुंबकम की रचना होती है, सारी वसुधा सारी पृथ्वी के सारे मनुष्य मात्र जब एक बाप को अपना बाप मानते हैं, पहचानते हैं किसे पहचानते हैं, किस बाप को पहचानते हैं? है ज्ञान सूर्य को नहीं, ज्ञान सागर को पहचानते हैं या ज्ञान सूर्य को पहचानते हैं? है सागर धरणी माता से अटैच है या सूर्य अटैच है? तीन हिस्सा सागर है, एक हिस्सा धरणी है। धरणी सागर की गोद में है या सागर धरणी की गोद में है? धरणी रचना है सागर की गोद में। सागर से धरणी अटैच है, डिटैच हो सकती है, है? धरणी सागर से डिटैच हो सकती है या सागर धरणी से डिटैच हो सकता है? जब जलमयी हो जाएगी महाप्रलय के समय, महामृत्यु के समय, तो भी धरणे कहाँ समा करके रहेगी? सागर में समा के रहेगी। और वो धरणी का जिसे पांच तत्वों का संघात कहा जाता है, धरणी माने पृथ्वी, पृथ्वी में पांचों तत्व विराजमान है, जल भी है, वायु भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है और आकाश भी है। इसलिए जो धरणी है वो सागर से डिटैच होकर नहीं रह सकती। ये पक्की प्रवृत्ति है, सागर और धरणी सूर्य को निवृत्त कहेंगे या प्रवृत्त कहेंगे? सूर्य अटैच है या डिटैच्ड है? सूर्य तो सदा डिटैच है, वो स्थूल सूर्य की बात नहीं है। कौन से सूर्य की बात है? ज्ञान सूर्य शिव की बात है, जो शिव सदा ही डिटैच होकर रहता है, कभी भी किसी आत्मा के साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट नहीं है, तो फिर इस सृष्टि पर आने की क्या दरकार है? है? किसी से अटैचमेंट होता है तब ही पीछे पीछे भागता है या बिना अटैचमेंट के भागता है? है? अटैचमेंट होता है तो भागता है। तो आत्माओं का बाप शिव बाप किसके पीछे भागता है? है? उसके पास भी प्रकाश दर्शिता का अखूट भंडार जब इकट्ठा हो जाता है तो ठहर नहीं सकता। जैसे कोई भी नौजवान पुरुष अपने अंदर की शक्ति को सदा काल के लिए ठहरा कर नहीं रख सकता। रख सकता है? ऐसे ही वो परम पुरुष है। कौन? पुरुष माने आत्मा है। आत्माओं के बीच परम पुरुष कौन है? शरीर रूपी पुरी मैं शयन करने वाला, रहने वाला परम पुरुष कौन है? शंकर। पुरुष माने आत्मा, शंकर आत्मा है, उसका बाप आत्मा नहीं, उसका कोई बाप नहीं। तो जो शिव बाप है उसके पास कौन सा सत्व है जिस सत्व को, जिस सार को वो अपने पास धारण करके रख ही नहीं सकता? उस परम पुरुष को भी ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ, षष्ठी की बड़े से बड़ी माँ चाहिए, परम ब्रह्म चाहिए। इसलिए जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, जिस मनुष्य तन में अव्वल नंबर में प्रवेश करता है वो ही परम ब्रह्म कहा जाता है। अव्वल नंबर माशूका, वो स्वयं कौन हुआ? परम ब्रह्म माशूका है, तो परम ब्रह्म का आधार लेने वाला क्या हुआ? आशिक हुआ। और वो परम पुरुष है, पुरुष रूप जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच वो परे से परे रहने वाली शक्ति है। जिसके पास पहुंच इस सृष्टि रूपी चक्र में कोई भी महान से महान कही जाने वाली आत्मा की पहुंच हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो खुदा है, खुदा आता है या कोई उसके पास पहुंचता है? खुद आता है। इसलिए बोला आदम को खुदा मत कहो, हाँ आदम मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष, जो सत्य बाप कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, वो मनुष्य आत्माओं के बाप में प्रवेश करके उसको परम ब्रह्म का टाइटल देकर अपनी सारी पावर उड़ेल देता है। क्या पावर है उसके पास? आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। तो उस बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है? अकूत ज्ञान के भंडार की प्रॉपर्टी है। वो वसुधैव कुटुंबकम की रचना करने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी को सब पहली रचना में तिरोहित कर देता है। और फिर डिटैच हो जाता है। इसलिए बोला, मैं जब आता हूं तो दत्त से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। दूसरी बात, गायन है जनक का, क्या एक सेकंड में जीवन मुक्ति दी मिली? जनक माने क्या? जन्म देने वाला, जन्म करने वाला। जन माने जन्म, का माने करने वाला, माने जनक का माने पिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। एक सेकंड में जीवन मुक्ति लेता है। वो कौन सा सेकंड? पुरुषार्थ की संपन्नता का सेकंड है या अधूरे पुरुषार्थ की बात है? है पुरुषार्थ की संपन्नता की बात है। क्या पुरुषार्थ है? एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। परंतु बाबा तो साकार निराकार मेल, इसे ही कहा जाता है। तो उसे कौन मिलता है साकार निराकार का मेल? है सुप्रीम सोल तो निराकार, फिर साकार का मेल कैसे कहें? है बोला, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो शरीर है तेरा, यही धर्म क्षेत्र है, यही कर्म क्षेत्र है, यही युद्ध क्षेत्र है। इसलिए जैसे युद्ध क्षेत्र में सारी दुनिया को स्वाहा होना है, ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का क्षेत्र है। इस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का विनाश होना है, होना है या नहीं होना है? अरे ये यज्ञ कुंड विनाशी है या अविनाशी है? सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन इस यज्ञ कुंड का विनाश नहीं होगा। सारी दुनिया को स्वाहा होना है। स्वा? हाँ, स्व माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु। सारी दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी आत्मा ज्योति बिंदु इस यज्ञ कुंड में स्वाहा। जो झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया, कौन बैठा हुआ है? शंकर का नग्न रूप निराकार बैठा हुआ है। निराकार है, यह शरीर भी है, है? निराकार है या साकार भी है? साकार भी है। फिर झाड़ के चित्र में नंगा क्यों दिखाया? साकार तो है, शरीर तो है, लेकिन शरीर और शरीर की इंद्रियां निराकारी स्टेज में है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं, जिसको कहा जाता है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसे ही कोई भी ज्ञान इंद्रिय हो या कोई भी कर्म इंद्रिय हो, उस कर्म इंद्रिय से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया। कर्म का फल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो शरीरधारी आत्मा है वो भोगी की स्टेज में है या अभोक्ता की स्टेज में है? अभोक्ता की स्टेज। और वो अभोक्ता जब तक संगम युग कायम रहेगा, तब तक अभोक्ता ही बनकर रहेगा। इंद्रियों से भोग भोगने की बात ही नहीं। स्वयं भी अभोक्ता और नंबर बार दूसरी आत्माओं को भी उस स्टेज में धारण कराता है या नहीं कराता? वो ही उसका परिवार है। राज परिवार राजा ही प्राप्त करने वालों का परिवार, कितनी आत्माओं का परिवार है, है 16108 आत्माओं का परिवार है। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, जिन्होंने भगवान से राजयोग सीखा है, प्रैक्टिकल भगवान से राजयोग सीखा है या निराकार भगवान से राजयोग सीखा है, प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है। शरीर की इंद्रियों के साथ होता है। 16000 का क्या गायन है शास्त्रों में? है अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, इंद्रियों से भी अतीत का सुख, जिस सुख में इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है, इंद्रियों से परे का सुख है। इंद्रियां कितनी है? है 10 इंद्रियां है ना, 7 इंद्रियां हैं, उन 7 इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है उस स्टेज में, जिसे अतिंद्रिय सुख की स्टेज कहा जाता है। वो इंद्रियों से अतीत का सुख कौन दे सकता है? इंद्रियों वाला दे सकता है या जिसको इंद्रियां हैं ही नहीं वो दे सकता है? है जिसको इंद्रियां नहीं है वो दे सकता है? इंद्रियां हैं फिर भी इंद्रियों के सुख को अनुभव करने वाला नहीं, ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनाए, जिसे गीता में बोला है पक्का कर्म योग, कर्म इंद्रियों से कर्म करे लेकिन मन बुद्धि की स्टेज, मन बुद्धि रूपी जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसकी स्टेज इतनी ऊंची रहे, ऊंची स्टेज में रहे कि नीचे की इंद्रियों में जा ही न सके। इंद्रियां नीचे हैं और मन बुद्धि ऊपर है, ज्यादा ताकतवर कौन है, इंद्रियां या मन बुद्धि? मन बुद्धि ज्यादा ताकतवर, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को उत्तरे, उत्त माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाए, जबरियन हरण करके ले जाए। वो आत्मा 63 जन्म की आदि है इंद्रियों का सुख भोगने की, कर्म इंद्रियों का सुख भोगने की। कर्म इंद्रियों में भी जो बड़ी पावरफुल इंद्रिय है, कौन सी इंद्रिय है? काम इंद्रिय है। जिसे भस्म करने का श्रेय शास्त्रों में किसको मिला हुआ है? शंकर को मिला हुआ है। जो शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करता है, शिव स्वरूप बन जाता है, जिसकी यादगार द्वापर के आज में सतो प्रधान द्वापर में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी। वो यादगार निराकार आत्मा शिव की यादगार है। निवृत्त रहने वाली आत्मा की यादगार है या सदा प्रवृत्त रहने वाली आत्मा की यादगार है? सदा निवृत्त है वो ज्ञान सूर्य, जो ज्ञान सागर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। और ज्ञान रत्नों का सारा भंडार तिरोहित कर देता है। किसमें? ज्ञान सागर में। इसलिए सागर को रत्नाकर भी कहते हैं, रत्नागर, रत्नों का आगार भंडार कहते हैं। ज्ञान सागर को ही जो ओरिजिनल ज्ञान सूर्य है, वो सूर्य का टाइटल देते हैं, जिससे सूर्यवंश की पैदाइश होती है। भक्ति मार्ग में सूर्यवंशियों में शिरोमणि किसको कहा जाता है? अरे कोई आत्मा है जो भक्ति मार्ग में सूर्यवंशियों में शिरोमणि गाई जाती है? राम। शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर है। तो सूर्यवंश का शिरोमणि जो राम है, वो क्या विशेष काम करता है? जो नाम राम पड़ता है, रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, अतीन्द्रिय सुख में खेलते हैं, जिसकी याद में उसे राम कहा जाता है। योग लगाते हैं, जो बोला है बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर को याद करो, एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? है कहते तो यही है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो ये तीन तीन कहां से आ गए? है एक में ही तीनों समा जाते हैं। वो कौन है एक जिसमें स्वर्ग भी समाया हुआ है, सुखधाम भी समाया हुआ है? शांति धाम घर भी समाया हुआ है, क्योंकि आत्माएं अपनी ओरिजिनल स्थिति में है ही शांत स्वरूप। और वो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप भी है। जिस मनुष्य आत्माओं के बाप में आत्माओं के बाप शिव का स्वरूप समाया हुआ है, क्या स्वरूप? क्या स्वरूप समाया हुआ है? है? अरे शिव का क्या स्वरूप है? ज्योति बिंदु निराकार, जिसे गीता में कहा अणु अणियांसम, अणु से भी अनुरूप है, अति सूक्ष्म है। ज्ञान की ज्योति है। वो शिव का स्वरूप उसमें समाया हुआ है। जो बोला है तो मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या कहा? किसने कहा? है शिव बाप ने कहा कि तुम आत्मा रूपी बच्चे जितना मुझे आत्माओं के बाप को याद करते हो, माने ज्योति बिंदु को याद करते हो, उतना मैं सुप्रीम सोल बाप तुम्हारे साथ हूं। तो कोई के साथ सदा काल भी रहेगा या नहीं रहेगा? है? रह सकता है या नहीं रह सकता है? जिसके साथ सदा काल रह सके उसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ये नहीं कहा एक शिव बाबा शिव बाप है, शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम है या शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है? शिव बाबा सदा कायम। महाविनाश महामृत्यु के समय भी कायम रहेगा, रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तब कायम रहता है जब अपनी क्षरित हुई आत्माओं को आत्मा को प्रैक्टिस के द्वारा बार बार अभ्यास के द्वारा और इस दुनिया से वैराग प्राप्त करने के आधार पर निरंतर स्थिर हो जाता है। के लिए जब तक प्राणी मात्र की आत्माएं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे कीटाणु या मनुष्य आत्माएं सात संपन्न स्टेज धारण कर लें, तो संपन्न हुई आत्माओं को पांच तत्वों का पुतला भी कैसा चाहिए? सत्व प्रधान चाहिए, संपन्न पुतला चाहिए या रजो प्रधान तमो प्रधान चाहिए? पुतला चाहिए, परंतु महाविनाश के समय एटमिक विस्फोट के समय चतुर्थ विश्व युद्ध के अंत में पांच तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश तामसी रूप धारण किए हुए होंगे या सात्विक राजसी होंगे, तामसी बन जाएंगे। कौन इनको तामसी बनाता है? अरे अपने आप तामसी बनते हैं, क्यों कोई बनाने के लिए निमित्त बनता है? है? कौन निमित्त बनता है? है? कौन? अरे भगवान निमित्त बनता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहने वाला परमेश्वर निमित्त बनता है या मनुष्य आत्मा निमित्त बनती है? है मनुष्य आत्माएं निमित्त बनती हैं, जिन्हें नर कहा जाता है। तो नर पांच तत्वों को तामसी बनाता है या सात्विक बनाता है? तामसी बनाता है। परंतु वो ही नर जब राजयोग के अभ्यास से नारायण बन जाता है, क्या बन जाता है? नारायण माने नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही सदा घर है, वो ज्ञान जल के बाहर कभी रहता ही नहीं। सोते जागते कोई भी कर्म करते करते उस आत्मा में ज्ञान समाया हुआ होता है या ज्ञान का अंधकार समाया हुआ होता है? तो ऐसी आत्मा जो अव्वल नंबर में नर से नारायण बनती है, वो नारायण वाली आत्मा अतीन्द्रिय सुख के वाइब्रेशन से मनुष्य सृष्टि के पहले पत्तों को जन्म देती है। इंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है, है? ज्ञानेंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है या कर्मेंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है? है? वाइब्रेशन के आधार पर जन्म देती है। वाइब्रेशन को सात्व को बनाने के बाद सारी सृष्टि की आत्माओं को आकर्षित किया जा सकता है। प्रैक्टिकल में देखें, अब तक की तीन प्रकार के ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया तैयार हुई। ज्ञान यज्ञ के आज में ओम मंडली तैयार हुई, ब्राह्मणों की दुनिया बनी ना। दूसरी दुनिया 1947 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से तैयार हुई, ब्राह्मणों की दुनिया बनी ना। 1976 में है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम बदल करके क्या पड़ गया, बाप के ब्रह्म वाक्य के आधार पर नाम बदल गया। और बोल दिया कि वो शब्द प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हटाकर आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखो। इतना ही नहीं, आगे बोला फिर सभी सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। ओम मंडली खलास, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सब खलास। क्योंकि भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को ही भगवान नहीं माना जाता, ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा के यादगार मंदिर भी नहीं बनाए जाते पूजा करने के लिए। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सदा काल कायम रहेगा है, नहीं रह सकता। परंतु आध्यात्मिकता की रोशनी सदा काल प्रज्वलित रहेगी सारी दुनिया में, न सही लेकिन भारत में जरूर प्रज्वलित रहेगी। ये अविनाशी ज्ञान या रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसका कभी विनाश नहीं होता। उस ज्ञान की क्षमा का नाम क्या है, जो सच रूपी रंगमंच पर सदा प्रज्वलित तो होती रहती है। सूर्य के रूप में भले नहीं, लेकिन क्षमा के रूप में, दीपक के रूप में जरूर रहती है। ये ज्ञान प्रायः लोप होता है, संपूर्ण लोप नहीं होता। इस ज्ञान ग्रंथ का नाम क्या पड़ता है, ज्ञान के शास्त्र का नाम क्या पड़ता है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान का गाया हुआ गीत, ज्ञान का गीत। जिस गीत से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। क्या मत मिलती है, कि विकारी मनुष्य विकारी नर कैसे नर से नारायण बन सकता है? गीता ज्ञान से रास्ता मिलता है, तरीका मिलता है नर से नारायण बनने का, या कोई बनाता है? है तरीका मिलता है, तो वो है राजयोग। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है, जिस राज को जानने वाले, मानने वाले, उस राज पर जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में चलने वाले राजयोगी गोप गोपिकाओं के रूप में गए हुए हैं। ये नाम क्यों पड़ा? गोप नाम क्यों पड़ा? है गुप्त, क्या किया गुप्त? गुप्त पुरुषार्थ किया, उसको गुप्त करने की क्या दरकार? गुप्त पुरुषार्थ किया या भगवान के साथ गुप्त संबंध जोड़ा? है वो कौन सा संबंध है जिसको गुप्त रखने की जरूरत है? भाई बहन का संबंध को गुप्त रखने की जरूरत है? बाप बच्चे का संबंध गुप्त रखने की जरूरत है? माँ बेटे के संबंध को गुप्त रखने की जरूरत है? कौन सा संबंध है? है याद है, पति पत्नी का संबंध है, जो आज की भ्रष्ट दुनिया में है, भ्रष्ट इंद्रियों के आधार पर चलता है, जो 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है सुख भोगने की, ये भारतवासियों ने जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होकर के इन 63 जन्मों में अनेकों का संग लेते हुए ये राक्षसी सुख भोगा है। जिस राक्षसी सुख के आदि में ही दुख का बीजारोपण होता है, जो दुख देते हैं उनको बोला है दुर्योधन दुशासन। क्या बोला? दुष्ट युद्ध करने वाले, प्यार का युद्ध नहीं। कैसा युद्ध? दुष्ट युद्ध। दुष्ट युद्ध देवान का होता है या आत्मिक प्यार का होता है? है देवान का होता है। तो देवान से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होता है। ये पांचों विकार दुखदायी हैं। उनमें भी सबसे जास्ती दुखदायी काम विकार है, जो राक्षसों की देन है। राक्षसी आत्माएं जो द्वैतवादी द्वापर युग से आती हैं इस संसार में, द्वैतवादी माने है दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मतें, दो दो कुल, दो से चार, चार से आठ, भिन्न मतों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, हर मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। कोई का संकल्प दूसरे के संकल्प से 100% मिल ही नहीं सकता। दुनिया के कोई भी पति पत्नी क्लोज कांटेक्ट में आने वाले हों, उनके भी संकल्प एक दूसरे को काटने वाले होते हैं या सहयोगी होते हैं, काटने वाले होते हैं, झगड़ा बन जाता है। उस झगड़ा पट्टी को विष्णु संप्रदाय कहेंगे विश्व समान पुरुषार्थी कहेंगे। विष्णु का हाथी है नो विशैताल। जिस विष्णु की विष्णु देवता की बुद्धि में विषय विकार का नाम निशान नहीं रहता, जिसकी यादगार दिखाई है कि सर्प सर्पणियों की शैया पर पड़ा रहता है, कौन से युग में है, कौन से युग में है, संगम युग में सर्प सर्पणियों की शैया के अंदर पड़ा रहता है, फिर भी उसको कोई लेप छेप नहीं लगता। वो एक ही देवता दिखाया गया है, विष्णु देवता, जिसकी सहयोगी भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। भुजा माने सहयोगी, कोई लेफ्टिस्ट के रूप में सहयोगी, कोई राइटियस के रूप में सहयोगी, कोई ऊंची स्टेज में सहयोगी और कोई नीची स्टेज में सहयोगी। भुजाएं है ना, परंतु भुजाएं अपने आप कंट्रोल होती हैं या भुजाओं को कोई कंट्रोल करने वाला है, है कंट्रोलर जिसे राजा कहते हैं, वो ऊंची गद्दी पर बैठता है या नीचे बैठता है या समान गद्दी पर बैठता है, ऊंची स्टेज पर बैठता है। तो विष्णु को जो चार भुजाएं दिखाते हैं, वो चार भुजाएं जिनके लिए गायन है ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा के रूप में कितनों का गायन है, है चतुर्भुजी ब्रह्मा का विशेष गायन है, चार भुजाओं वाला ब्रह्मा। कौन कौन सी आत्माएं सहयोगी, विश्व रूप में सहयोगी बनती हैं अपनी संपन्न स्टेज में, है नहीं याद रहा, अरे बोला है ब्रह्म वाक्य में ही बोला है, वेद वाक्य में ही बोला है, भारत में ये परंपरा रही है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते, दूसरी जाती है तीसरी लेते, चार चार शादियां भी कर लेते हैं। ये परंपरा कहाँ से चली है? कहाँ से चली? संगम युग से चली। ये परंपरा किसने चलाई? जो गीता में लिखा है कि मनुष्य मात्र मेरा अनुसरण करते हैं, आगे पीछे कभी न कभी। तो सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो पहले पहले किस में प्रवेश करते है? किसका आधार लेते है? परम ब्रह्म का आधार लेते। परंतु शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा पंचमुखी, उसका एक सिर काट दिया गया। क्या कर दिया? काट दिया। मना आत्मा अलग हुई और देवान अलग हो गया, तो अच्छी बात हुई या खराब बात हो गई है? अच्छी बात हुई। आत्माभिमानी बनना तो अच्छी बात है ना, सोल कॉन्शियसनेस। बाकी जो चार ब्रह्म हैं, उनके चित्र मिलते हैं, चरित्र की यादगार चित्र मिलते हैं। कोई का मुख पूरब की ओर, कोई का मुख पश्चिम की ओर, कोई का मुख उत्तर की ओर, कोई का मुख दक्षिण की ओर। उसे चौमुखी महादेव की भी कहा जाता है। कंपिल में मैं चौमुखी महादेव का मंदिर देखा है, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग में चार मुख बने हुए हैं। मंदिर का दरवाजा पूरब की ओर है। जो मुख पूरब की ओर है वो कौन सा मुख होगा? है बोला है विष्णु की चार भुजाएं दिखाते हैं, साक्षात्कार से बनाए गए त्रिमूर्ति के चित्र में नीचे लिखा है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती, राम और सीता, तो ये चार आत्माएं हैं, है ना? चारों ही आत्माओं में यज्ञ की हिस्ट्री को देखें तो दूसरे नंबर का ब्रह्मा कौन? परम ब्रह्म के बाद दूसरे नंबर की मनुष्यात्मा कौन सी है, जिसने साकार सो निराकार बाबा को पहले पहचाना। छोटी माँ, उसके बाद बड़ी माँ, उसके बाद सन 47 में ब्राह्मणों के संगठन का नाम क्या पड़ा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। पहला नाम किसका आया, दादा लेकर आज ब्रह्मा का नाम आया। और ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्मा कौन सी थी, सरस्वती। तो ये चार आत्माएं नंबर वार ब्रह्मा हो गई। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते, माना इन आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। परंतु इनमें भी जो विश्व विजय कराने वाली आत्माएं हैं, जिनकी यादगार में आज भी झंडारोहण किया जाता है, तीन रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा, जिसकी याद में यादगार में बोला त्रिमूर्ति हाउस बनाया गया, त्रिमूर्ति रोड नाम रखते हैं। ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत तो होता है तो कितने सूत्र धारण करते हैं, तीन सूत्र धारण करते हैं। वो तीन आत्माएं कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तीन के रूप में पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा नामधारियों में कौन, ब्रह्मा के तो पांच मुख दिखाए गए, ज्यादा से ज्यादा पांच। तो उन पांच मुखों में से दो मुख तो वो ही आत्मा है जो सतयुग के आदि में षष्ठ रूपी वृक्ष के पहले पत्ते बनते हैं, कौन, राधा और कृष्ण सतयुग के। बाकी कौन तीन रह गए है, लक्ष्मी नारायण और जगदम्बा। लक्ष्मी महालक्ष्मी भी कही जाती है, पूजा कब होती है महालक्ष्मी की, कब पूजा होती है, दीपावली पर। अवली माने लाइन कतार लग जाती है, 108 आत्माएं रूपी दीपक दक से तैयार हो जाते हैं। वो दीपक बाद में तैयार होते हैं, परंतु एक दिन पहले एक विशेष दीपक जगता है, उसका नाम क्या है? धर्मराज का दिया। तो धर्म स्थापना करने वाला, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला वो धर्मराज गाया हुआ है। बड़े से बड़ी धारणा क्या होती है? है सहनशीलता। हर प्रकार की धारणा दो रूप में भी हो सकती है या नहीं हो सकती। एक दिखावे की धारणा और एक अंदरूनी धारणा। ज्यादा पावर किस में होती है? दादा लेखराज ब्रह्मा, कृष्ण वाली आत्मा, उसके भेंट स्वरूप कौन से धर्म की, धर्म पिता की आत्मा दिखाई जाती है? है कौन से धर्म की राशि मिलाई जाती है? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कोई कारण है तब मिलाई जाती है या अकारण ही मिलाई जाती है? क्या कारण है? है क्रिश्चियंस में दिखावा करने की वृत्ति जिस विशेष होती है, और वही वृत्ति क्रिश्चियंस ने कहां से उठाई है? कृष्ण से उठाई। लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, बहुत सी बातें हैं जो कृष्ण के जीवन से मिलती जुलती हैं। शास्त्रों में दिखाया कि कृष्ण के पांव में बैलिये ने कील मारी, बाण मारा और खलास हो गए। तो क्राइस्ट के लिए क्या दिखाते हैं? कांटों से ये लगाई दिया गया। कृष्ण का जन्म कुमारी से दिखाते हैं शास्त्रों में। किसे? कुमारी से दिखाते हैं। और क्राइस्ट का जन है कुमारी से दिखाते हैं। दिखाते हैं, दिखावा है। वास्तव में कुमारी से कोई जन्म ले नहीं सकता। ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, दादा लेखराज इन्होंने बात को जो साक्षात्कार की सच्चाई थी उसके ऊपर तब ही निश्चय किया जब ओम राधे मम्मा की आत्मा निकल पड़ी। ओम राधे ज्यादा बुद्धिमान थी, या ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज ज्यादा बुद्धिमान थी? ओम राधे के आधार पर ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय पक्का हो गया और दोनों आत्माओं ने साथ साथ समझा, एक दूसरे के वाइब्रेशन से प्रभावित होकर समझा साक्षात्कारों के रहस्य को। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण का जन्म किससे हुआ? कुमारी के प्रभाव से हुआ। वैसे भी पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कौन सी एक आत्मा है जो सदा सर्वदा कुमारी है? जो सिखों में भी मान्यता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जगदम्बा अगर कुमारी है तो जगत की दूसरे धर्म की आत्माएं कहां से आती हैं? छोटी माँ जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, गृह लक्ष्मी, वसुदैव कुटुंबकम की लक्ष्मी, अव्वल नंबर सती, पार्वती का पूर्व जन्म का नाम क्या था? है सती नाम था। किस आधार पर सती नाम पड़ा? है सत्य को धारण करने वाली को सती कहा गया। कुमारी जीवन ही सत्य को धारण करने वाली है। तो सतयुग में जो राधा कृष्ण रूपी युगल पत्तों का जन्म होता है, किससे होता है? कोई माता है या नहीं है? वही माता है जो नारी से अव्वल नंबर लक्ष्मी बनती है। वाइब्रेशन की सुख लेने के आधार पर शरीर की साकार इंद्रियों का सुख नहीं लेती और राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देती है। साथ साथ जन्म होता है, रिहर्सल कहाँ होती है? शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। यज्ञ के आज में दादा लेखराज ब्रह्मा और ओम राधे ने कौन सी आत्मा के द्वारा समझा, कौन सी आत्मा के द्वारा बुद्धि में वो निश्चयात्मक ज्ञान गर्भ पड़ गया? छोटी माँ ने बताया, बड़ी माँ ने जब बताया जो बड़ बोली थी तो ब्रह्मा बाबा को निश्चय नहीं हुआ। जब छोटी माँ ने समझाया तो ओम राधे के वाइब्रेशन के पवित्रता के आधार पर, कुमारी के वाइब्रेशन के आधार पर ब्रह्मा बाबा को भी पक्का निश्चय बैठ गया। तो दोनों तरीके से देखें, तो कृष्ण वाली आत्मा का जन्म हद और बेहद में किससे होता है? कुमारी से होता है। इसलिए किशियंस में भी ये परंपरा को फॉलो कर लिया गया दिखावा करने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं, हमारा धर्म भी किसी से कम नहीं है। तो दिखावा कब किया जाता है? किसी से ईर्ष्या द्वेष होता है तब किया जाता है कि बिना ईर्ष्या द्वेष के दिखावा किया जाता है? ईर्ष्या द्वेष होता है। बाकी ऐसे नहीं है कि जिसके लिए हम मंदिर में जाकर गाते हैं, एक लिंग के सामने जाकर गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है और तू ही मेरा पिता है, एक या दो चार, एक, तो उसमें माता के गुण नहीं है क्या? वो अब्बल नंबर की माता नहीं है? अब्बल नंबर की माता है तो सहनशीलता का गुण है या नहीं है? है। जो सहनशीलता अंदर की चीज है, बाहर दिखावे की बात नहीं है। जैसे बात आई कि सावरकर बाबा के पास आया था, ब्रह्मा बाबा के पास, दादा लेखराज के पास, बाबा ने उसको बड़ा मान सम्मान दिया, अच्छे से व्यवहार किया। जब चला गया तो बच्चों को बताया, ये कोई देवी देवता सनातन धर्म में थोड़े ही आएगा। तो उस आत्मा के प्रति सहनशीलता का भाव जो सन्मुख आई थी, सन्मुख होने के लिए आई थी, विमुख होने का संकल्प चला या सन्मुख होने का संकल्प चला? जबकि मनुष्य सृष्टि का बाप जैसे परिवार में बाप होता है, अपने परिवार के सभी भाइयों का कल्याण चाहता है, सदा कल्याण चाहता है, या कभी चाहता है कभी नहीं चाहता है, सदा कल्याण चाहता है, सच्चा बाप होगा, घर में पड़ोस में जोर से आग लग जाए बच्चे घर में आग के अंदर झुलस रहे हों, तो बाप अपने जान की परवाह किए बगैर बच्चों को निकालेगा या नहीं निकालेगा? वो है हद की आग। और अभी बेहद की काम आग्नि फैल रही है दुनिया में। ये काम आग्नि में जो बाप के बच्चे हैं, जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है, रुद्राक्ष के बीज, रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की जाती है, वो रुद्र की अक्ष है। अक्ष माने आंख। उन 108 आंखों के द्वारा वो सारे संसार की गतिविधि को देखेगा। इसलिए उनका नाम रुद्राक्ष के मणकों के साथ टैली किया जाता है। वो रुद्राक्ष के बीज कौन से देश में मिलते हैं? नेपाल में मिलते हैं। क्या नाम दिया? नेपाल का मतलब क्या हुआ? नई दुनिया की पालना करने वाला। एक है हद का नेपाल और यहाँ है ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का नेपाल। नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन नेपाल नाम से विख्यात होता है। जिस नेपाल के ऊपर कभी भी विदेशियों ने आक्रमण नहीं किया, सारे भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया, लेकिन नेपाल के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए। क्यों? क्यों नहीं कर पाए? है नहीं, पहाड़ पर है, इसलिए नहीं कर पाए। पहाड़ ऊंची स्टेज पर है। जो बेहद ब्राह्मणों का नेपाल है, की स्टेज क्या है? है ऊंची स्टेज है। कैसी ऊंची स्टेज? उद्धरेत आत्मा आत्मानम, ज्योति बिंदु आत्मा को कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी उद्धरेत हरण करके ले जाए, ऐसी प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं। शरीर से भले स्त्री या पुरुष हो, लेकिन अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार के आधार पर क्या है? है पुरुष है। कठोर स्वभाव संस्कार, ऐसी कठोरता के आधार पर ही दिखाते हैं कि उन्होंने रुद्रगणों ने प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। महाविनाश के समय महाकाल के सहयोगी बनते हैं। धर्मराज के क्या बनते हैं? है दूत कहे जाते हैं। जैसे कोई देश दूसरे दूसरे देशों में अपना अम्बेसडर राजदूत कायम करता है, ऐसे जब संपूर्ण राजधानी तैयार होगी नई दुनिया की, उस समय वो 108 मणके देश देशांतर में जो भी धर्म संप्रदाय या राज्य फैले हुए हैं, राजधानियां दूसरे देशों की बनी हुई हैं, उनके ऊपर पूरी नजर रखेंगे। अच्छे जासूस बनकर रहेंगे। लेकिन उन रुद्रगणों का जो संगठन है, संपूर्ण ब्राह्मणों का संगठन, उसके लिए बोला ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। जब अंदर में पांव भी नहीं रख सकेंगे, बुद्धि के आधार पर कुछ नॉलेज ही नहीं उनको होगी, तो कोई प्रकार की नई राजधानी को क्षति पहुंचा सकेंगे? पहुंचा सकेंगे? नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए बोला कि भगवान वाच है, भगवान निराकार को कहा जाता है, साकारी मनुष्य या कोई भी साकारी प्राणी को भगवान नहीं कहा जा सकता। जो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, घोड़े का अवतार, सुअर का अवतार, भगवान जानवरों को पढ़ाई पढ़ाएगा ज्ञान की या मनुष्यों को पढ़ाएगा? मनुष्य मनन चिंतन मंथन कर सकता है, जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकते। जैसे मत्स्य अवतार दिखाते हैं, माछले का अवतार, जो माछला इतना विशाल रूप धारण करता है कि कोई नदियों पोखरों में नहीं समाता, कोई झीलों में नहीं समाता, वो इतना बड़ा माछला कि सारे संसार को हप कर जाता है। इसलिए खास पंजाब में सिखों में ये गायन है, राज करेगा खास राज। ये बोई माछला है जिसे मगरमच्छ के रूप में दिखाते हैं। कौन सवारी करता है? है? गंगा सवारी करती है। क्यों? गंगा क्यों सवारी करती है? है? बड़ी जगदम्बा है या गंगा है? है? कौन है बड़ी? जगदम्बा सबकी अम्बा है। यहाँ तक कि जब ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन का विनाश होता है, चाहे ओम मंडली हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हो, चाहे एडवांस पार्टी हो, तो जगदम्बा महाकाली के रूप में दुनिया का संहार करती है, क्योंकि सारी दुनिया रावण संप्रदाय हो जाती है। या कोई रहता है, हैं? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रावण संप्रदाय बन जाते हैं कि कोई राम संप्रदाय भी बनकर रहता है, हैं? रहता है, हैं? राम संप्रदाय का मतलब ही है राम का संप्रदाय। तुम सात सजनिया हो, तुम सात सीताएं हो, तुम सात द्रौपदियां हो, तुम सात पार्वतियां हो। ये क्यों नहीं कहा तुम सब राधाएं हो, है? क्यों नहीं कहा? राम माने राम, धा माने धारण करने वाली। राम का जो पुरुषार्थ रूपी धनुष है, उस धनुष को बाएं हाथ से उठा करके घर की सफाई करने वाली जो माता है वो सीता दिखाई जाती है। अब्बल लंबर की सीता, वो सीता नहीं जिसको रावण ले गया। क्या सीताएं भी दो दिखाते हैं कि एक ही दिखाते हैं? दो सीताएं। तो रावण कौन सी सीता को ले जाता है, है? महालक्ष्मी कहा जाता है। तो दो लक्ष्मियां मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक बनती हैं, तब ही तो महालक्ष्मी कहा जाता है। तो कौन कौन सी आत्माएं हैं? जगदम्बा और लक्ष्मी, महागौरी और महाकाली। दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल जब होता है तो दीपावली मनाई जाती है। इस समय की यादगार, जब राम की राजगद्दी होती है, राम वाली आत्मा जब राजधानी में राजा के रूप में बैठती है, उस समय की यादगार है दीपावली। रावण के सिर हरण करने के बाद, दस सिर हरण करने के बाद, दशहरा मनाने के बाद राजधानी स्थापन होती है या पहले ही स्थापन होती है? है, बाद में स्थापन होती है। तो पहले राम को क्या करना पड़े, है? दस सिरों का हरण करना पड़े। कौन कौन से दस सिर? पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पांच पंचभूत, जिनमें बुद्धि होती है या नहीं होती है, जड़त्व भाव होता है या चैतन्य भाव होता है? जड़त्व भाव। ऐसी जड़त्व भाव को धारण करने वाली आत्माएं जिन्हें परा प्रकृति कहा जाता है, वो पांच आत्माओं का संगठन जगदम्बा के रूप में कहा जाता है, जिसे रामायण में क्या नाम दिया है? मंदोदरी। कैसी उदरी? मंद बुद्धि रूपी पेट वाली। मंद बुद्धि क्यों? क्योंकि लंबे समय तक बाप के साथ, सुप्रीम सोल बाप के साथ पार्ट बजाने के बावजूद भी बाप को भूल जाती है, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है या निश्चय बुद्धि रहती है? है अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। तो बुद्धिमान कहें या बुद्धिहीन कहें, है जगत पिता का साथी मन का जगदम्बा साथी है ना, रुद्रमाला में साथ ही साथ दोनों मन के हैं, फिर भी एक फर्स्ट नंबर में और दूसरा लास्ट नंबर में। रुद्रमाला के बीच सबसे नीचा पद पाने वाला या ऊंचा पद पाने वाला? क्यों है? क्या कारण हुआ है? बाप को नहीं पहचाना। जिस बाप ने एड़ी चोटी की ताकत लगाकर उसे जगदम्बा की परवरिश की है, जिस बाप ने अपनी सारी शक्तियां जगदम्बा को अर्पण कर दी, वो ही जगदम्बा इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी बाप को भूल जाती। कितनी शक्तिशाली, कितनी शक्तिशाली के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के ऊपर राज्य करती है। सारी रुद्रमाला के ऊपर भी राज्य करती है, विजयमाला के ऊपर भी राज्य करती है। लक्ष्मी वाली आत्मा उसके अंदर में रहती है या अंदर से बाहर हो जाती है? अंदर में रहती है। वंडरफुल बात है। जो परंपरा अपने भारत में है, क्या कि वर पक्ष का परिवार में जो मुखिया माता होती है, वर पक्ष की माँ, वो वधू पक्ष में जाती है और वधू की गोद भरती है धन संपत्ति से। क्या कहा? भरती है या नहीं? नॉर्थ इंडिया में तो ये परंपरा है, खासकर ब्राह्मणों में तो जरूर है। ये परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? है संगम युग से होती है। एडवांस ज्ञान बड़ा बोली के आधार पर, जिसने सबसे जास्ती लिया, जो परंपरा है कलयुग की, पंडित सोजोई गाल बजाबा, क्या वो ही पंडित विद्वान माना जाता है, होशियार माना जाता है जो गाल बजाना अच्छा जानता है? दुनिया के सभी देशों में घूम घूम के देख लो, जो भाषण करने वाले नेताएं हैं, गाल बजाने वाले नेताएं हैं, जो बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, कहते हैं हम अपने देश को स्वर्ग बनाएंगे, कहते हैं या नहीं देते हैं? कहते हैं ना। वो गाल बजाने वाले नेता हैं, सच्ची बातें सुनाते हैं या बरगलाते हैं देशवासियों को? बरगलाते हैं। ऐसे ही उनकी अम्बा है जगदम्बा, जो गाल बजाने में बड़ी माहिर है यज्ञ के आदि से। ब्रह्मा बाबा को भी प्रभावित किया था, ब्रह्मा बाबा भी किससे सुनते थे? जो बोला है ऐसी ऐसी बच्चियां थीं जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। अमृत वेले बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। किसके द्वारा लिखाते थे? हैं? उन्हीं शक्तियों के द्वारा। वो ही आत्माएं, उनमें एक बड़बोली और एक समझू और ज्यादा सयानी। परंतु आखिर इन तो दोनों ही आत्माएं जब संपन्न स्टेज आत्मा की बनती है तो बाप को पहचानती है या नहीं पहचानती है? अरे विजयमाला में ऐड होती है या नहीं होती है? राजधानी तैयार होती है या नहीं होती है? होती है ना। तो राजधानी बाद में तैयार होती है, पहले जगदम्बा एडवांस ज्ञान सुना करके भारत माता की गोद भरती है ज्ञान रत्नों से और प्रभावित कर लेती है। तो जब महागौरी वाली आत्मा जिसे अव्वल नंबर भारतवासी कहा जाए, मन बुद्धि से कहां की वासी है? भारतवासी। जो भारतवासियों में परंपरा है, ये भारत मातृ देश है। किसका देश? माताओं का देश। माताएं दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाती है, यही कारण है कि द्वापर युग से जो भी दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आए भारत में, वो माताएं कन्वर्ट होती रही, जिन्हें भारतवासी कहा जाता है। क्या जो भी सूर्यवंशी हैं वो कहां के वासी हैं? हैं? भारतवासी है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदैव संगम युग में ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है उसी के मस्तक में जो ज्योति बिंदु है, जो आत्मा कहती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, उसी को याद करती है। तो पक्के भारतवासी हुए या नहीं हुए? हैं? पक्के भारतवासी हुए। लेकिन मातृ देश के हैं, माताओं के स्वभाव संस्कार के हैं, या पिता के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, चाहे रुद्रमाला के मन के हों चाहे विजयमाला के मन के हों, स्वभाव संस्कार माता का है या पिता का है? है? माता का है। इसलिए द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आए, जो भी धर्म आए, उन धर्मों के प्रभाव में सब भारत की माताएं भारतवासी कन्वर्ट होती रहे। दूसरे देश दूसरे धर्म के कोई भी आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होती, ये भारतवासी हैं जो हिस्ट्री में सदैव दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। क्या कारण हुआ है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ये माताओं की आदत है, भारतवासी माताओं की, इनको जो जो कुछ सुनाएगा सत्य वचन मारा, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, अपनी अकल नहीं चलाएंगे। तो बताया जो इनकॉर्पोरियल स्टेज धारण करता है, अव्वल नंबर में वो एक ही है, कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप, फिर उसे भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता? भगवान। धनवान नहीं, धनवाला नहीं, क्या कहा जाता? भगवान कहा जाता है। तो देखो ये निराकारी स्टेज धारण करने का चांस सबको मिलता है। क्या 500-700 करोड़ को निराकार को याद करने का चांस मिलता है या नहीं मिलता है? अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाओ तो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएंगे या नहीं? चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेते हैं है? लेते हैं चांस लेते हैं है? यहाँ वाले लेते हैं 100% चांस लिया कोई लेता है? फिर इनकॉर्पोरियल बनने का, निराकार बनने का चांस सबको मिलता है, बहुत चांस मिलता है। क्या? बहुत चांस मिलता है। देखें इन चांस लेने वालों में भी कोई प्रैक्टिकल अमल में लाएगा, ये देखना है। एक रस्क सेक्रेटरी अमेरिका का है और वो भी इनको चिट्ठी इसने लिखा है, ब्रह्मा बाबा ने, जो ये लिखते हैं अभी इसमें अभी स्पिरिचुअल गॉड फादर सुप्रीम सोल अक्षर जरूर लिखना चाहिए और नॉलेजफुल भी अक्षर लिखना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में समझाते समय ये जरूर लिखना चाहिए कि इसमें नॉलेजफुल बाप आकर के अपना संपूर्ण ज्ञान का भंडार तिरोहित करती हैं। तो फिर वो ही बातें इसके ऊपर भी लागू हों। इसके ऊपर है ब्रह्मा बाबा के ऊपर, जब संपूर्ण राजधानी तैयार होगी तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर का बंधन त्याग देगी या बंधन में बंधी रहेगी? त्याग देगी, सदा सर्वदा काल के लिए राम वाली आत्मा की सहयोगी बन जाएगी, भुजा बन जाएगी। तो बोला फिर वो ही बातें इनकॉर्पोरियल बनने की, इनके इसके ऊपर भी मीठे मीठे सीखेंगे बच्चों प्रति, बाप दादा का याद प्यारो, गुड नाइट।